ओम शांति। ये कोई नई डिग्री नहीं है, ये तो हमारे देवी परिवार के बीच की बातें हैं। क्योंकि लौकिक दुनिया के अंदर भी कारोबार के लिए, जैसे उन्होंने बताया, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मेरा एक क्लाइंट था, उनकी 40-50 ब्रांचेस देश विदेश में थी। उनका एक बात फिक्स था कि जो भी मैनेजर बनेगा, ब्रांच मैनेजर, वो MBA होना ही चाहिए। तो इस प्रकार से MBA का, बॉम्बे यूनिवर्सिटी ने भी MBA का कोर्स किया था। उसमें 8 अलग अलग चैनल्स थी, 8 प्रकार के। उसमें 3 के अंदर जो है वो KC कॉलेज के अंदर बॉम्बे में चलती थी वो, उसके अंदर भी 3 के अंदर अपना SFL ट्रेनिंग जो कोर्स जो है उसका 3 में पेपर रखा हुआ था, 100 मार्क्स का ईच। और हमारी बॉम्बे यूनिवर्सिटी के साथ एग्रीमेंट भी था कि ये MBA का 3 जो लाइन है उसके अंदर SML ट्रेनिंग का जो कारोबार चलेगा वो ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा ही चलेगा, उसके पेपर सेटिंग भी हम लोग ही करेंगे। इन्होंने फिर कहा कि हमारा तो नियम है, हम जो भी लेक्चर करने का आते हैं उसको 500 रुपीज देते हैं। हमने कहा हम तो लेते नहीं है, तो कहा अगर पैसा नहीं लेंगे तो आपका लेक्चर यहाँ नहीं हो सकता है। तो फिर दादी प्रकाशमणि के साथ में बातचीत करके जो लेक्चर देने के लिए जाता था उसके नाम पर पैसा लेने का, वो वाउचर पर साइन करके देता, ऐसा बनाया। बाद में तो प्रिंसिपल कुदनानी जो है वो KC कॉलेज का, वो मर गया। उसके बाद वो KC कॉलेज वालों ने भी MBA का निकाल दिया, क्योंकि अब बॉम्बे में बहुत सी कॉलेजेस हो गई है उसके अंदर MBA का कारोबार होता है। तो ये मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कारोबार जो है, मतलब कारोबार सीखना, वो भी सीखना पड़ता है। आपको मालूम होगा भारत में, राजकोट में और देहरादून या कहां पर राजकुमारों की ट्रेनिंग की कॉलेज थी, जिसके अंदर राजकुमारों को राजा बनेंगे भविष्य में, तो कैसे कारोबार चलेगा, कैसे कारोबार करेगा, उसके लिए ट्रेनिंग का कारोबार वहां सिखाया जाता था। तो मैं हमेशा ही कहता हूं कि हमारी ये जो विश्वविद्यालय बाबा की बनी हुई है वो भी एक प्रिंस एंड प्रिंसेस ट्रेनिंग कॉलेज है। क्योंकि सतयुग की दुनिया के, चाहे विश्व महाराजा, चाहे राजा, या तो द्वापर युग महाराजा, या तो द्वापर से बनने वाले राजा हो, जो भी हो गए, इन सबको पूर्ण रूप से ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, तब तो कारोबार करेंगे। और उसमें भी ब्रह्मा बाबा को निमित्त बाबा ने बनाया, और धर्म स्थापक और शिव बाबा के कारोबार में एक बहुत फंडामेंटल फर्क है। और धर्म स्थापक जो बाबा ने जैसे बताया है, वो और धर्म स्थापक आकर के अपने धर्म की स्थापना करते हैं, और फिर इसी पृथ्वी ऊपर अलग अलग नाम रूप देश काल के आधार पर जन्म लेते हैं और अपने धर्म की पालना का कारोबार करते हैं। आप सबको मालूम होगा, बाबा ने मुरली में भी बताया, बाबा ने भी कहा है, क्राइस्ट भी अभी भिन्न नाम रूप देश काल से अंदर होगा और अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, कारोबार करने के लिए उसको आगे बढ़ाता होगा। ऐसे ही गुरु नानक देव के बारे में बाबा ने बताया था। तो ये तो और धर्म स्थापकों को अपने धर्म के आगे कारोबार कैसे किया जाए उसका कोई फिक्र नहीं होती है। क्राइस्ट का भी आपने सुना होगा, क्राइस्ट के क्रूसिफिकेशन हुआ, उसके अगले दिन रात को ही जो उसका जो पट्ट शिष्य था उसको इन्होंने अपनी 2 चाबियां थी, एक सोने की थी और एक चांदी की थी, वो उनको दिया और कहा कि आज से तुमको दुनिया पीटर के रूप में कहेंगी, याद करेंगी, और तुम मेरा जो कार्य जो है उसको तुम आगे बढ़ाएंगे। सेंट पीटर जो है फिर उस वहां गया अपने इटली में गया, रोम के अंदर गया। रोम के बादशाह ने तो उनको पकड़ करके उसको फांसी देने की बात कही थी, तो भाग करके जेरूसलेम में आ गया। आपको मालूम होगा कहानी, जेरूसलेम में आया तो उसको फिर क्राइस्ट का साक्षात्कार हुआ। क्राइस्ट ने कहा कि तुम क्यों भाग के आया है, तुम वहां जाओ, भले तुमको फांसी चढ़ाओ, मेरे को भी क्रूसिफिकेशन यहाँ किया था, तुम करेंगे तो तुम्हारा क्रूसिफिकेशन के द्वारा तुम्हारा भी नाम बहुत आगे आ जाएगा। और वो वहां गया, रोम के राजा ने उसको पकड़ा, उसकी फांसी की सजा हुई, और इसलिए सेंट पीटर्स बेसिलिका जो है रोम में और वेटिकन सिटी जो बना हुआ है सेंट पीटर्स की यादगार में, मतलब सक्सेसर के रूप में प्रॉब्लम करने के लिए, उसे संभालने के लिए हमेशा ही जरूरत पड़ती है, कौन धर्म का कारोबार आगे बढ़ाएगा, जैसे राजा का कारोबार होता है। आप जानते हैं मुगल साम्राज्य के अंदर बाबर हुआ, बाबर के बाद हुमायूं हुआ, हुमायूं के बाद अकबर हुआ, अकबर के बाद जहांगीर शाहजहां आदि आदि, जैसे वो चला आता है, वंश परंपरा चलता आता रहता है। उस प्रकार से है रामायण के अंदर भी ऐसा ही है। रामायण के अंदर जो जनक राजा जो है वो पोजिशन है, उसमें जो जिसका जिसकी बेटी सीता जो थी वो उसका सातवां जनक था, और सातवां जनक का उसका असली नाम सिरत ध्वज था, पर जब गद्दी पर बैठता है तो वो जनक बन जाता है, और सिरत ध्वज नाम जो है ना उसका वाइप आउट हो जाता है। तो इस प्रकार से सभी धर्मों के अंदर, यहाँ तो राज कारोबार के अंदर चलाने वालों की भविष्य की बातें होती है। शिव बाबा के कनेक्शन में ये बात है कि शिव बाबा द्वापर के बाद अपना साक्षात्कार कराने का कारोबार थोड़ा थोड़ा शुरू करते हैं, और संगम युग में आकर के बाबा यहाँ पर आकर के हम बच्चों को यह विश्वविद्यालय की स्थापना करके सिखाते हैं। परंतु बाबा सतयुग और त्रेता युग में नहीं आ सकता है, आपको मालूम होगा। और इसके कारण क्या हो गया है, बाबा को अपने जो भी अभी तीन धर्म स्थापन करते हैं, ब्राह्मण विषय देवी देवता और क्षत्रिय धर्म, इस प्रकार से जो धर्म स्थापन करते हैं उस धर्म का रक्षा करने वाले चलाने वालों के बाबा को हम सिलेक्शन करना पड़ता है। इसलिए बाबा हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे कारोबार चलेगा। आपको मैंने बाबा को एक बार कहा था कि बाबा एक माया परीक्षा लेते, दुनिया वाले परीक्षा लेते और आप भी परीक्षा लेते हो, आखिर में हम कितनी परीक्षा देवे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे दुनिया के अंदर, बाबा ने अभी तो बाबा ने कहा था, दुनिया में आप मटका लेने के लिए जाते हो, पानी का मटका, तो उसको देखते हो कि उसमें लीकेज तो नहीं है, कुछ भी और तो कोई तकलीफ नहीं है, उसके बाद लेते हो। तो फिर आप एक मटका लेने में भी उसकी परीक्षा करते हो। तो मुझे तो आप बच्चों के हाथ में ये विश्व का कारोबार 2500 वर्ष और 21 जन्म के लिए संभालने के लिए देने का है। मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं लूंगा तो क्या करूंगा। बाबा ने तीन शब्द कहा है कि ये तीन शब्दों के आधार पर विश्व का सतयुग त्रेता की दुनिया का कारोबार चलेगा, अखंड अटल और निर्विघ्न। अखंड अटल और निर्विघ्न के चलाने के लिए सतयुगी और त्रेता युगी कारोबार के लिए और द्वापर युग में और अपने संगम युग में भी ये कारोबार करने के लिए बाबा सिखाता है। क्योंकि संगम युग का कारोबार देखिए, अपने पांडव भवन का, ज्ञान सरोवर का या शांति भवन का देखो, सेंटरों का देखो, ये भी एक गवर्नमेंट जैसा ही है, पांडव गवर्नमेंट जैसा ही है, और इसके लिए वो ट्रेनिंग मिलती है, देते रहते हैं। इसलिए जैसे बाबा ने कहा है ना, पांच विकार के सिवाय छठा विकार भी है, अलबेलापन वो छठा विकार है, मालूम है ना, सब अनुभवी है। छठा विकार का तो सब अनुभवी होगा, काम क्रोध लोभ मोह का नहीं होगा, परंतु छठा विकार का तो सब अलबेलापन जो है, बेफिक्र। बाबा ने कहा बेफिक्र बनना चाहिए, हम बनते हैं बेपरवाह बादशाह बन जाते हैं, इस प्रकार से होता है। बाबा इस प्रकार से ट्रेनिंग देते हैं। तो संगम युग में और सतयुग की त्रेता युग का कारोबार कैसे चले उसकी बाबा ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग लेने के लिए बाबा ने ये विश्वविद्यालय खोला हुआ है। जैसे मैंने आपको ज्ञानामृत में भी लिखा हुआ था, आपको मालूम होगा कि ट्रेनिंग नहीं होती और कारोबार हाथ में आ जाता है तो क्या हो जाता है। उसके लिए ट्रांसफर ऑफ पावर बाय मिडनाइट करके किताब बनी हुई है। विदेश के दो पत्रकार जो यहाँ आए, उन्होंने पूरी रिसर्च किया और उसके बाद वो किताब लिखी हुई थी, ट्रांसफर ऑफ पावर बाय मिडनाइट। उसके अंदर इन्होंने लिखा हुआ था, बहुत सुंदर बात लिखी हुई थी, इसलिए मैंने 2-4 बार कई जगह पर कहा भी है, ज्ञानामृत में भी 1-2 बार लिखा हुआ है कि जब भारत आजाद हुआ तब हिंदू मुसलमानों के रायट्स बहुत हुए, वहां से जो ट्रेन आती थी उसके अंदर हिंदुओं की कत्ल करके यहाँ भेजते थे और यहाँ से मुसलमानों की कत्ल करके वहां भेजते थे। इस प्रकार से बहुत ही जिसको कहते हैं मतलब ब्लड शेड बहुत हो चुका था। और फिर सीक्रेट सर्विसेज ऑफ इंडिया जो होती है, इन्होंने रिपोर्ट भी दिया कि हमारे हाथ में ये बात नहीं है, हमारे कंट्रोल की बात नहीं है, हम अभी ये ब्लड शेड जो है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर इन्होंने नेहरू ने मिलिट्री वालों को बुलाया, मिलिट्री वालों ने कहा हम भी ये नहीं कर सकते तो इसके लिए क्या किया जाए। तो रविवार का दिन था, उसमें वो किताब में लिखा हुआ है, रविवार का दिन नेहरू ने इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाई और उसमें नक्की किया क्या किया जाए, कैसे ये ब्लड शेड जो है इतने मर रहे हैं, जो आजादी के लिए मरने के लिए नहीं था पर आजादी के बाद इतने लोग मरते हैं। तो फिर सबने यही नक्की किया, उस टाइम पर लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत के वाइसरॉय भी थे, और तो इसलिए उनको कहा कि नक्की किया कि हम वाइसरॉय के हाथ में फिर से सत्ता का सूत्र जो है कंट्रोल जो है उनके हाथ में दे दे। और नेहरू ने वो सबने मिलकर के कागज लिखा बनाया और लॉर्ड माउंटबेटन की अपॉइंटमेंट लिया रविवार के दिन। तो उसने शाम को 4 बजे का टाइम दिया, वो सारा किताब में लिखा हुआ है, आप पढ़ना, बहुत अच्छी किताब है। इसके अंदर आपको मालूम पड़ेगा कि हिंदुस्तान का उस टाइम का पॉलिटिकल सिनोरिया कैसे था। तो 4 बजे गए नेहरू के पास वल्लभ भाई पटेल, और ये अपने लॉर्ड माउंटबेटन के पास वल्लभ भाई पटेल गया, ये अपने जवाहरलाल नेहरू गया, और तीसरा था मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। इन्होंने जाकर के कागज दिया तो माउंटबेटन ने यही कहा, अभी तो आपके हाथ में सत्ता का सूत्र है, मैं तो यहाँ टेम्पररी थोड़े समय के लिए ही आपके पास हूँ, मैं भी थोड़े समय के बाद चला जाऊंगा इंग्लैंड के अंदर, वापस चला जाऊंगा, आप संभालो, आपके हाथों में सत्ता का सूत्र है। तो इन्होंने नेहरू ने उसमें लिखा था पत्र कि हम लोग में असफल रहे हैं कि इस प्रकार से राज्य कारोबार करने के लिए जिसके कारण इतने लोगों का मृत्यु हो रही है, हत्या हो रही है। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि आप संभालो, आप क्यों नहीं संभालते हो। तो उन्होंने नेहरू ने यही कहा कि हमको इसकी ट्रेनिंग नहीं है, हमने तो सारा समय जो है हमारी जिंदगी के बहुत ज्यादा समय तो हमने सत्याग्रह करना, भारत सरकार भारत का आजादी भारत को मिल जाए उस प्रकार का कार्यक्रम करना, अहिंसा का प्रयोग करना, ऐसे ऐसे महात्मा गांधी ने आदि ने जो भी किया था वो हम काम करते रहे, हमको राज्य कारोबार करने का अभ्यास नहीं था। तो कहा मेरे में क्यों विश्वास रखते हो, माउंटबेटन ने कहा। तो कहा आप जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई तो उसके अंदर जापान के साइड के जो भी युद्ध का कारोबार था वो लॉर्ड माउंटबेटन ने संभाला हुआ था। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आपके पास ये अनुभव है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर ये तो हिंदुस्तान के समस्या के से बहुत बड़ी समस्या थी, वो एक बाजू में जर्मनी की हिटलर की वॉर थी, यहाँ पर जापान की वॉर थी, तो इसलिए आपके पास अनुभव है और आपके पास ऐसा है और इसलिए आप ये संभालो। तो इसके कारण उन्होंने कहा ठीक है और उसे संभाला और 10-15 दिन में ही सारे हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने कंट्रोल कर दिया। तो ये जो नेहरू की जो बात जो है कि हमको तो हाँ सत्याग्रह करना पड़ा, हिंदुस्तान को आजाद करना पड़ा, उसमें ही हमारा टाइम गया। ऐसे ही अगर सत्यों की दुनिया के अंदर किसी को हमारे में से किसी को बाबा भेज के जाओ सत्यों की दुनिया का कारोबार करो, तो आप तो कहेंगे क्या करें बाबा, हमने तो सारी जिंदगी जो है संगम युग की जिंदगी हम पवित्र रहने में निकाली है, ईश्वरीय सेवा करने में निकाली है, लोगों लौकिक दुनिया के बंधनों को दूर करने में निकाली है, हमको राज्य कारोबार का अभ्यास नहीं है, तो बाबा क्या करेगा। जैसे जानकी दादी जो है ना, आपको मालूम होगा उनका अनुभव आपने सुना होगा, जानकी दादी को ईश्वरीय सेवा के लिए बाबा ने सोचा कि मैं भेजूं जानकी दादी को, जानकी दादी ने कहा नहीं बाबा मैं नहीं जाऊंगी, मेरे को यहाँ ही रहना है। तो बाबा ने कहा कि अच्छा तो मैं दूसरी जानकी कहाँ से लाऊंगा। तो उसके कारण दादी ने कहा ठीक है बाबा आप कहते हो तो मैं जाती हूँ। और आप जानते हैं दादी जानकी ने पहले भारत में परिभ्रमण किया, उसके बाद पुणे आए, पुणे में 16 साल रहे और उसके बाद 38 या 40 साल लंदन में रह करके सेवा किया। तो दूसरी जानकी कहाँ से लाऊं, वो जो ब्रह्मा बाबा को बाबा ने सवाल पूछा था वही हम बच्चों को भी बाबा पूछेगा। समझो मिसाल के तौर पर विनय भाई को बाबा कहते जाओ संभालो, विनय भाई कहेंगे हमने तो सत्य अपने पवित्र रहने में ईश्वरीय सेवा करने में इसमें ही समय निकाला है, हमको राज्य कारोबार करने का अभ्यास नहीं है। तो बाबा यही कहेंगे अच्छा मैं विनय दूसरा कहाँ से लाऊंगा, आपको जाना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये राज्य कारोबार का एक बहुत बड़ा भारी प्रश्न है और विषय है, टॉपिक है। जैसे ज्ञान में मैंने आपको बताया विकारों के अंदर 5 विकारों की छठा विकार है, इस प्रकार से ज्ञान के भी 4 विषय है, ज्ञान योग धारणा और सेवा। उसके अलावा छठा कारोबार जो है, छठा विषय जो है वो कारोबार का है, मैनेजमेंट का है, और ये मैनेजमेंट का कारोबार का बहुत बड़ा टॉपिक है। और बाबा का प्लानिंग देखो कितना सुंदर है कि बाबा ने ब्रह्मा बाबा को 69 में अव्यक्त कर दिया, और अव्यक्त करके उनको दूसरा जन्म नहीं दिया। आप जानते हैं ना बाबा का कारोबार, दूसरा जन्म नहीं दिया, दिया भटनागर जी, अपने साथ में रखा, अपने साथ में रख करके उसको हर बात में ट्रेनिंग देते हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, क्योंकि शिव बाबा तो सतयुग में त्रेता युग में नहीं आ सकता है, तो इसके कारण बाबा को, ब्रह्मा बाबा को साथ में रख करके, इसलिए तो नाम हो गया बाप दादा। तो बाप दादा के रूप में बाप है और दादा क्या है वो तो आप सब जानते हैं। तो इस प्रकार से दादा को इतनी सुंदर ट्रेनिंग दे रहे हैं, और उसके परिणाम रूप क्या हो गया कि जब नई दुनिया स्थापन होती है, मनुस्मृति में आप पहला अध्याय जो है उसमें 10वां श्लोक है, हाँ, कि सुवर्ण गर्भ अर्थात परमात्मा ने नई दुनिया की रचना की, और उसके बाद उनके लिए प्रश्न हुआ तो किसको मैं नई दुनिया का कारोबार दे दूं संभालने के लिए। तब इन्होंने 10वां श्लोक में लिखा हुआ है, हमारे इंटरप्रिटेशन हम अपने ज्ञान के हिसाब से कर सकते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि ये जो है पिछले कर्म जन्म में नर और आयन, आयन जो रामायण जो है वो आयन माना आने का स्थान, राम जो है जिसका आने का स्थान जो है भारत जो है, इस प्रकार से उसका नाम रामायण पड़ा हुआ था। इस प्रकार से नारायण नर प्लस अयन, अयन माना आने का स्थान, पिछले कल्प में परमात्मा का आने का स्थान जो था, जो व्यक्ति जो था, जो जीव, जो आत्मा जो थी, जिसका शरीर में परमात्मा आकर के काम करते थे, ऐसे व्यक्ति को बाबा ने चुना और उसके हाथ में नई दुनिया का बागडोर जो भी है, मैनेजमेंट का कारोबार जो है उनके हाथ में दे दिया। ये मनुस्मृति आप पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा, तब मालूम पड़ेगा नारायण शब्द का क्या अर्थ है, क्योंकि कई शब्द ऐसे होते हैं वो अर्थ सहित होते हैं, तो इसलिए नारायण शब्द। तो नई दुनिया का कारोबार, क्योंकि बाबा उनको अभी अपने साथ में रखते हैं, हर जगह पर हर समय पर साथ में रखते हैं, कई बात में बाबा को आगे नहीं आने देते हैं, कई बात में बाबा उनको आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपको मालूम होगा बाबा का एक अनुभव जो है, गुलिया दादी ने बताया था कि ब्रह्मा बाबा और अव्यक्त बाबा दोनों जा रहे थे, तो इतने में अचानक एक जगह पर ब्रह्मा बाबा को अव्यक्त बाबा ने कहा कि तुम रुको मैं अभी आता हूँ। तो बाबा गए, 5-10 मिनट के बाद आए, तो बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने पूछा उनको कि आप कहाँ गए थे, तो कहा मेरा एक भगत था, वो उसकी इच्छा थी कि मेरे को हनुमान के द्वारा ही साक्षात्कार हो, तो इसलिए, नहीं तो वो खुदकुशी अर्थात अपने आप की आत्महत्या करने वाला था, इसलिए मुझे वहां जाना पड़ा और मैं वो हनुमान की मूर्ति में प्रवेश कर करके उसको मैंने उनको साक्षात्कार कराया। तो ब्रह्मा बाबा ने अव्यक्त बाबा को कहा आपने क्यों ये तकलीफ लिया, मैं जाकर के उसको साक्षात्कार करा के आता था। तो बाबा ने कहा नहीं, तुम तो फिर भी आत्मा ही हो, तुम त्रिकाल सर्वशक्तिवान नहीं हो, और इसके कारण तुम हनुमान के उसमें प्रवेश करके उसको साक्षात्कार नहीं करा सकते। तो एक डिस्टिंक्शन तो सदा ही रहेगा बाप और दादा का। अव्यक्त मुरलियों में आप सुनते होंगे, कई बातों में ब्रह्मा बाबा के नाम नहीं देते, खाली अव्यक्त बाप को याद करो। जैसे मनमना भव बाप को याद करने के लिए कहेंगे बाप को याद करो, बाप दादा को याद करने को ऐसी बात नहीं आती है। थोड़ा मुरली को गहराई से पढ़ेंगे तो अच्छी बात आपको मालूम पड़ेगा डिस्टिंक्शन क्या है। तो इस प्रकार से बाबा ब्रह्मा बाबा को तैयार कर रहे हैं, इसी प्रकार से हम बच्चों को भी तैयार कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि चार सब्जेक्ट जो है, ज्ञान योग धारणा और सेवा के साथ साथ कारोबार करने का, वो भी एक बड़ा सब्जेक्ट है। आज हमारी बहनें जो आती है, पहले तो हम सीधे उनको सेवा समर्पित कर देते थे, अभी 3 वर्ष ट्रेनिंग सेंटर में रखते, ट्रेनिंग में देते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग मिल जाए उसके बाद उसको आगे बढ़ाते हैं और उसको आगे लेके जाते हैं। तो इस प्रकार से ट्रेनिंग आदि का कारोबार होना बहुत जरूरी है। मैं अपना अनुभव सुनाऊं, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गया, उसके बाद हमारे पास कारोबार की थोड़ी थोड़ी जिम्मेवारी आ गई। दादी प्रकाशमणि हर बार कई बातों में देते थे, पहले तो हम बेफिक्र बादशाह ही थे, कोई भी बात होती थी बाबा को पूछते थे, बाबा के अच्छा बच्चा ये करो ये करो ये करो, और हम करते थे। हम अपने अपनी बुद्धि को जो है चलाते नहीं थे, बाबा ने कहा जो डायरेक्शन दिया उस प्रकार से ही हम करते रहते थे। परंतु बाद में जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गया उसके बाद डायरेक्शन के रूप में कारोबार करने की बात आई तो बाबा ने बताया कि अभी मैनेजमेंट में खुद ही बताऊं अपना 21 जनवरी का अनुभव बाबा को, बाबा ने जो बताया मैंने बाबा से पूछा कि बाबा अपना म्यूजियम का मकान जो है नखी लेक का वो हमको खरीद करना है, हम खरीद करें तो हाँ खरीद करना ही है। मैंने कहा ठीक है बाबा हम खरीद कर लेंगे। बाबा ने कहा नहीं ऐसे मत खरीद करना, अभी से आज से मतलब अभी आपका मैनेजमेंट का कारोबार परिवर्तित हुआ है, अभी आपस में मीटिंग करने की राय करने की और सबकी राय से कारोबार करने का। मैंने कहा अभी आपसे तो पूछा अभी सबको पूछने की क्या जरूरत है, कि नहीं ये नया कारोबार के अंदर सबकी राय से करना पड़ेगा, इस प्रकार से कारोबार चलाना पड़ेगा। और तब से क्या हो गया, दादी प्रकाशमणि तो हर बात में बहुत ही एक्टिव थे, इसके कारण हमको जो ड्यूटी मिलती थी हम करते थे, परंतु दादी जी को हर बात में पूछते थे। अब दादी जी अव्यक्त तो हो गए, उसके बाद दादी जानकी ने मैनेजमेंट किया शुरू, आप जानते हैं मुख्य संचालिका के रूप में उनके हाथ में कारोबार गया। तो मुख्य संचालिका के रूप में जब कारोबार उनके हाथ में गया तो इन्होंने हमको तीनों भाइयों को सबको बिठा करके कहा कि भाई देखो मैं 40 साल से भारत से बाहर थी, मैं भारत विदेश का कारोबार अच्छी रीत से जानती हूँ परंतु भारत का कारोबार मैं इतना अच्छी रीत से नहीं जानती हूँ। और गुलजार दादी ने कह दिया मैं इस कारोबार के अंदर नहीं आना चाहती हूँ। तो भी क्या किया जाए, तो दादी ने हम तीन भाई जो है निर्वीर भाई ब्रिजमोहन भाई और हमको कारोबार के लिए आगे बढ़ाया। और हम अनुभव करते हैं कि कितनी बातें सीखने को मिलती है, जो बातें हमने सोचा भी नहीं वो होगा इसके बारे में सोचना पड़ता है। सेंटर पर आप जाते हैं हम सब जाते हैं तो क्या होता है, सुबह गए मुरली का क्लास में सुने और मुरली सुन करके आ जाते हैं, वैसे भी सेवा का प्रोग्राम होता है तो सेवा के अंदर जाकर के मददगार बनते हैं और क्या करते हैं। जब मैनेजमेंट में आते हैं तो मालूम पड़ता है क्या क्या करना पड़ता है, हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है, सारे साल का गेहूं लेना पड़ता है फॉर एग्जाम्पल, तो गेहूं लेना पड़ता है तो सीजन होती है उसमें ले लेते हैं तो उसका दाम सस्ता होता है, तेल जो है खाने का जो होता है मूंगफली का तेल आदि वो भी सीजन में लेते हैं तो काफी फर्क पड़ जाता है, बाकी नहीं तो पीछे काफी महंगा हो जाता है। चावल कहाँ से लावे, हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग जगह से चावल मिलते हैं, किसको कौन से चावल पसंद है वो भी लेना पड़ता है, उसी प्रकार से लेना पड़ता है। इस प्रकार से कारोबार के अंदर गेहूं के चावल आदि क्या क्या करना चाहिए, कई खरीदी कितनी करनी चाहिए, वो सारी बातों को मैनेजमेंट में सीखनी पड़ती है। मैंने अभी तक बाप दादा को पूछा था जब हम विदेश में गए उस टाइम पर, मैंने बाबा को कहा बाबा मेरे में कौन सी बात की कमी है, कौन सी बात की कमी है, तो बाबा ने कहा तुमको सेंटर चलाने का नहीं आता है, उसका अभ्यास नहीं है, अनुभव नहीं है, तो तुमको सेंटर चलाने का अभ्यास की जरूरत है, उस बात की तुम्हारे में कमी है। तुमने बाबा को कहा तो आप हमको वरदान के रूप में दे दो कि हमको भी सेंटर चलाने का अनुभव हो जाए, क्योंकि बहुत करके बहनों को ही सेंटर चलाने का अनुभव होता है थोड़ा, जैसे वो गवर्नमेंट में माइनॉरिटी होती है ना, माइनॉरिटी का राइट्स होते हैं, उसके प्रकार से यहाँ पर भी हमारे पास भी भाई लोग माइनॉरिटी में हैं, और इसलिए हमारे ओम प्रकाश भाई और महेंद्र भाई जो थे मुख्य, और यहाँ बासव राज भाई था, ऐसे यहाँ तो उधर प्रेम सिंह भाई है थोड़े जो है, बाकी सारे सब जोन बड़े जोन जो है बहने ही संभालती है और भाइयों को इतना चांस नहीं मिलता है। तो बाबा ने मेरे को कहा मैं तुमको बच्चे चांस दे दूंगा, और उसके बाद हम विदेश में गए, न्यूयॉर्क में गए तो अढ़ाई मास रहे, वहां तो सारी दुनिया हमारे लिए नई थी, कहाँ से क्या मिलेगा क्या मालूम पड़ेगा, वो ढूंढना पड़ता था कैसे जाएंगे कैसे लाएंगे, पोस्ट ऑफिस में भी पोस्ट कैसे मिलेंगी कैसे करना पड़ेगा, मतलब हर चीज का अभ्यास अनुभव हो गया। हमने देखा कि सेंटर चलाने का कारोबार बहुत अनुभव की जरूरत है उसके अंदर, और इसके कारण क्या हो गया कि हमने वहां पर रहे जगदीश भाई और हम दोनों को हमें सेंटर चलाने का अभ्यास मिल गया। आपको मालूम नहीं होगा जगदीश भाई को झाड़ू निकालने की ड्यूटी थी और मुझे जो है कपड़ा धुलाई करने का और बर्तन साफ करने की ड्यूटी थी। ये भी जरूरी है सेंटर चलाने के लिए, कितनी जरूरी है। अब सिंपल बात बताऊं आपको, यहाँ पर पांडव भवन में ज्ञान सरोवर में यहाँ पर भाइयों के बाल कटवाने के लिए भी जरूरत पड़ती है, तो बाजार से कटवाते तो कितना महंगा पड़ता है, अब यहाँ पर भी दो भाई रखे हुए हैं ऊपर में पांडव भवन में भी एक भाई रखा हुआ है और ज्ञान सरोवर में एक भाई रखा हुआ है, उसकी भी जरूरत पड़ती है। जैसे हर टायर के अंदर हवा की जरूरत पड़ती है ना, हवा में टायर में हवा नहीं होगी तो क्या होगा, पंक्चर हो गया होगा तो गाड़ी भले कितने की करोड़ों रुपए की हो तो भी चल नहीं सकती। इस प्रकार से हर चीज की इतने बारीक में छोटी बातों की अभ्यास की जरूरत होती है, उसके लिए प्रोविजन करना पड़ता है, उसको रहने का प्रबंध, इसका खाने पीने का संबंध, इस प्रकार से करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। मैं आपको एक बताऊं, जब ज्ञान सरोवर बन रहा था तो हमने खरीदी करने का भी अभ्यास नहीं था। पहले पहले बाबा ने हमको अभ्यास कराया था श्री वन में कि बच्चे बाल्टियां 500 बाल्टियां भेजो, प्लास्टिक की बाल्टियां आती है ना उस जमाने में, जो पहले 62 से पहले आते थे, 62 में बाबा ने कहा, 61 में जो आते थे, आप में से कोई यहां बैठा हुआ होगा 61 का तो उनको मालूम होगा, हर एक ब्रह्मा कुमार कुमारी के पास में साथ में एक बिस्तर होगा और एक बाल्टी होगी, क्योंकि स्नान करने के लिए बाल्टी चाहिए, बिस्तर के अंदर सोने करने की जगह चाहिए। और रेलवे में बहुत फायदा था, बिस्तर का वजन रेलवे में जो 50 किलो या 40 किलो या 30 किलो जैसा भी जो भी होता होगा कारोबार में, उसका वजन में वो नहीं आता था, तो हम बिस्तर में सब भर करके लेके आते थे। तो बाबा ने 500 बाल्टियों को कहा तो मैं तो सोच में पड़ गया, बाल्टियां कहाँ मिलेंगी। तो घड़ी बहुत मेहनत किया, उस टाइम पर तो येल्लो पेजिस आदि नहीं था, यहाँ तो व्हाट्सएप आदि जो है या गूगल आदि नहीं था, ढूंढना पड़ा ढूंढना पड़ा, ढूंढते ढूंढते और सस्ते में सस्ती और अच्छे में अच्छी कहाँ से मिलेंगी वो किया। फिर अभी 500 बाल्टियां तो खरीद किया, परंतु आबू में कैसे भेजे, रेलवे में भेजेंगे तो गुड्स ट्रेन में जाएंगे तो कभी पहुंचेंगे क्या होगा। तो मैंने दादा विश्व किशोर को पत्र लिखा कि हमने बाल्टियां तो खरीद किया, अभी कैसे भेजो। तो बाबा ने कहा कि फलानी फलानी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसमें जाओ, वो उसका ट्रक रोज आबू रोड में आता है, आबू रोड से हम फिर ऊपर पांडव भवन में मंगा लेंगे। तब मालूम पड़ा हाँ कि एक बाल्टी खरीदने का और उसको आबू में भेजने का वो भी अगर अनुभव नहीं होगा हाँ तो बाल्टियां कहाँ से खरीद करे, कैसे करे और इसके सस्ते में सस्ती कैसे होनी चाहिए, वो सारा बात का बाबा ने ट्रेनिंग दिया। तो अभी तो कितनी बातों को ट्रेनिंग मिलती है रोज रोज, अभी भी यहाँ पर HOD जो है, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट जो है, उसके साथ ब्रादा मखीजा जी आए हुए हैं, LNT लार्सन एंड टुब्रो के डायरेक्टर हैं, उनके साथ अभी हमारी दोपहर में मीटिंग हुई और कैसे कैसे हर बात में कारोबार में मददगार बन सकते हैं, कैसे कारोबार में इकोनॉमी हो सकती है, क्योंकि उनके पास LNT चलाने का बहुत बड़ा अभ्यास है, बहुत बहुत अनुभव है, क्योंकि LNT कंपनी जो है जो इंडस्ट्रीज के कनेक्शन में यहाँ बैठे हुए हैं उनको मालूम होगा कि लार्सन एंड टुब्रो एक इंडस्ट्रियल वर्ल्ड के अंदर बहुत नामी ग्रामी कंपनी है। तो उसके डायरेक्टर के द्वारा मालूम पड़ा कैसे हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, सिखाया उन्होंने ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, कई बातों में कहा कि आपका इसमें खर्चा ज्यादा होता है, इसके बदले में ये करो। तो इस प्रकार से इन्होंने ही LED कौन सा बल्ब होता है वो लगाने के लिए कहा, इसके कारण कंजम्पशन में फर्क हो जाएगा, इस प्रकार से बातें बताते थे सिखाते थे। तो सीखना पड़ता है कारोबार के अंदर, इसलिए फक्त घर में रहेंगे और फिर कारोबार करने की सीखने की बातें करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अनुभव नहीं मिलेगा। आप जानते हैं विश्व महाराजा, फिर महाराजा राजा, फिर साहूकार और प्रजा, अगर ये राज्य कारोबार का अनुभव नहीं होगा, अभ्यास नहीं होगा तो आप अच्छे साहूकार बन सकेंगे, ऐसा मैं मानता हूं, यहां तो अच्छी प्रजा बन सकेंगे, परंतु तो राज्य कारोबार के लिए अभ्यास नहीं होगा, क्योंकि वहां सतयुग में जो राजा का लक्ष्मीनारायण नंबर 1 के लक्ष्मीनारायण नंबर 2 जो बनते हैं वो वंश परंपरा के आधार पर नहीं, परंतु संगम युग में किए हुए पुण्य कर्मों के हिसाब किताब के कारण ही वो राजगद्दी के लिए लायक बनता है। वो आप सबने मुरली में पढ़ा होगा सुना होगा, तो अभी से ही उस प्रकार से उस बात के लिए लायक बनना पड़ेगा और जो लायक बनेगा उसको ही बाबा विश्व का कारोबार दे सकते हैं। तो कारोबार के लिए बहुत कुछ सिखाते हैं, मैंने अभी तक 13-14 आर्टिकल्स लिखे हुए हैं मैनेजमेंट करने के लिए, और उसमें दुनिया के मैनेजमेंट गुरु जो है उनकी बातें लिखी थी, फिर से पिछले टाइम से मैंने चेंज किया है। और शिव बाबा जो है वो भी गुरु है, बहुत अच्छा कारोबार सिखाते हैं, करते भी है, और उसके आधार पर बाबा जो कारोबार करते हैं उसके आधार पर बाबा ने हम जब से ट्रस्ट का मैनेजमेंट मैनेजिंग ट्रस्टी बनाया तो मैंने बाबा को कहा था बाबा मुझे ट्रस्ट का चलाने का अभ्यास नहीं है, मैं तो इनकम टैक्स का वकील हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो बाबा ने कहा था ठीक है बच्चे, बाबा तुमको मदद करेगा। तो बाबा ने भी सिखाना शुरू किया, रोज रोज पत्र आते थे, अच्छा ये करो वो करो वो करो वो करो, जैसे मैंने पिछले आर्टिकल में लिखा हुआ है जो अभी छपेगा उसमें लिखा हुआ था। बाबा ने एक बात लिखी हमको कि बच्चे ब्याज के पीछे नहीं दौड़ना है, और जो भी भंडारी से आमदनी होती है उसको पहले सेवा में लगानी है, उसके बाद चल और अचल संपत्ति में इन्वेस्ट करने का है। हम ब्याज के पीछे, आप जानते हैं दुनिया के अंदर क्या करते हैं, अब इन्वेस्ट करते हैं पैसा, उसके ब्याज में पैसा मिलता है, उसके आधार पर कारोबार होता है। तो ब्रह्मा बाबा बहुत बड़े अनुभवी थे, इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, इन्होंने लिखा कि इन्वेस्टमेंट ब्याज के, क्योंकि ब्याज के आधार पर दुनिया में कई लोग चलते हैं, कई रिटायर्ड पर्सन होते हैं उसको क्या करते हैं, जिनके पास पेंशन नहीं मिलता है उसके पास ग्रेच्युटी आदि मिलती है, वो इन्वेस्ट करते हैं और उसके ब्याज से चलते हैं, चलाते हैं घर बार। तो बाबा उसको मना करते हैं, और ये हकीकत है। बाद में हमने सीखा कि बाबा का ये ब्याज के पीछे नहीं जाने का है, क्योंकि वो हमने ज्ञानामृत में लिखा हुआ है, इस महीने के ज्ञानामृत में आपको पढ़ने में मिलेगा कि 1930 के अंदर बड़ी भारी बहुत इंटरनेशनल डिप्रेशन आ गया था आर्थिक दुनिया के अंदर। उसका कारण यही था कि 1924 में बिजनेसमैन ने इंस्टॉलमेंट बाइंग शुरू किया, तब तक इंस्टॉलमेंट बाइंग नहीं था, इंस्टॉलमेंट बाइंग शुरू किया, इसलिए लोगों ने समझा कि हमारे पास जो मिलकत है थोड़ी लेकर के इंस्टॉलमेंट भरते रहेंगे, हमारे पास चीजें आ जाएंगी। उसके कारण डिमांड जो है एकदम बढ़ गई, मकानों का भी डिमांड बढ़ गई, चीजों की भी डिमांड बढ़ गई। तो व्यापारियों ने समझा इतनी डिमांड बढ़ गई है तो इन्होंने प्रोडक्शन बढ़ा दिया। अब ये तो डिमांड जो बढ़ी हुई थी वो टेम्पररी थी, क्योंकि जिन्होंने खरीद करने की ताकत नहीं थी, 100% पेमेंट अगेंस्ट डिलीवरी करने की बात थी वो नहीं थी, इसलिए उन्होंने क्या किया कि इंस्टॉलमेंट बाइंग का काम शुरू किया, और इसके कारण लोगों की डिमांड बहुत बढ़ गई, और उसके कारण 1930 का डिप्रेशन आया। डिप्रेशन आया तब तक जो है गोल्ड स्टैंडर्ड था, जो इकोनॉमिक्स जिन्होंने देखा हो सुना होगा, गोल्ड स्टैंडर्ड था कि जितना रुपये की आप नोट छापते हो या सर्कुलर सर्कुलर में मनी पैसे भेजते हो, इतना रुपये का गोल्ड आपके पास स्टॉक में होना चाहिए, 1930 तक वो था। फिर ये डिप्रेशन आया तो इसलिए कई इकोनॉमिस्ट जो है उसमें केन्स करके जो था इन्होंने बताया कि डेफिसिट फाइनेंसिंग का कारोबार करना चाहिए, सरकार को डिमांड बूस्टअप करने के लिए कारोबार करना चाहिए, नोट छापने चाहिए और गोल्ड स्टैंडर्ड से आप निकल जाओ। तो दुनिया के सभी गवर्नमेंट वन बाय वन गोल्ड स्टैंडर्ड से निकल गई और नोट छापना शुरू कर दिया। उसके परिणाम रूप क्या हो गया, आस्ते आस्ते जो है वो कारोबार में नोट्स बढ़ती गई। इसके कारण क्या हो गया, इन्फ्लेशन शुरू हो गया। इसके कारण जो है मनी के रूप में ही रहता है, धन जो है धन के रूप में रहता है, पर मकान जो है खरीद किया या कोई चीज खरीद करके रखा हाँ तो उसका तो दाम बढ़ता जाएगा। वास्तव में आपको बताऊं, इकोनॉमी से आपको ये जिन्होंने अर्थशास्त्र पढ़ा होगा, अभी बैंकों का फिक्स इंटरेस्ट जो आता है फिक्स डिपॉजिट के ऊपर 8% आता है, 8%, और इन्फ्लेशन रेट जो है वो 15-20% होता है। इन्फ्लेशन रेट 15-20% माना मनी की वैल्यू जो है हर साल 15-20% कम होती है, 15-20% की वैल्यू के डिप्रेशन होता है और इनकम होती है 8%, तो हर साल 7-15% का कई चीजों में ज्यादा डिप्रेशन दाम बढ़ता है, कम होता है, इस प्रकार से घाटा होता है। तो पैसे को पैसे के रूप में नहीं रखो, इसलिए बाबा ने कहा सेवा में लगाओ, नहीं तो उसके बाद चल और अचल संपत्ति में लगाओ। ये अनुभव है, बाबा का भी अनुभव है, आप लोगों का बाबा का अनुभव मालूम नहीं होगा। बाबा और साईंराम जो उसका पार्टनर था, जिन्होंने मिलकर के अपनी दुकान शुरू की थी उधर ज्वेलरी की, वो फिर बाबा को तो अव्यक्त बाबा ने कहा कि छोड़ो, इसलिए तो आया ना आई अलग की तार, वो जो सिंधी का पहाका है, आई अलभ को तार, हम बे के मिलो बादशाही, इस प्रकार से संस्कृत में अपने सिंधी में है। तो इसके कारण बाबा ने अपने पार्टनर को लिख दिया कि अभी मैं तो धंधा छोड़ दूंगा, मैं धंधा में नहीं आऊंगा, तो आपको जो भी करना हो आप करिए। तो पार्टनर ने लिखा उनको कि मैं भी आपको तो अनुभव है धंधा चलाने का, कारोबार करने, मैं तो हिसाब लिखता था, मैं फाइनेंस का देखता था, हिसाब लिखता था, मुझे ये ज्वेलरी क्या होती है, ये हीरा कैसे होता है, ये कैसा है, कैसा है, कितने कैरेट का है सोना है, ये सब बातें मुझे नहीं आती है, इसलिए मैं तो धंधा नहीं रखूंगा, हम पार्टनरशिप को डिसॉल्व करते हैं। या जिन्होंने बाबा का अनुभव सुना होगा, मुझे तो नारायण दादा जो है बाबा का बच्चा है उसने सबको बताया था, बाबा ने कहा जो भी तुमको करना हो कर दो, बंटवारा करो, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा रखता हूँ, तुम बंटवारा करो। तो इन्होंने क्या किया, साईराम ने जो है उसके पार्टनर जो है उसने क्या कहा कि बाबा मुझे सोना चांदी का इतना मालूम नहीं है, तो मैं जो अपनी कंपनी की जो लिक्विड लिक्विड एसेट्स जो है, कैश है, बैंक फिक्स डिपोजिट है, बैंक के पैसे या पैसे जो आने वाले हैं जिसको माल उधार में दिया हुआ है वो सब मैं ले लेता हूँ, और आपको जो है अपनी कंपनी के जो डायमंड्स है, ज्वेलरी जो है वो आपको दे देता हूँ। तो बाबा ने कहा ठीक है बच्चे, जो भी आप खुश रहो, क्योंकि ऐसा ना होना कि हमने साथ में धंधा किया है, साथ में रहे हैं, साथ में नौकरी किया हुआ था, तो इसके कारण आप जो भी दो। तो इन्होंने बाबा को गोल्ड दे दिया और डायमंड्स दे दिए, डायमंड्स ज्यादा थे बाबा डायमंड्स के अंदर, आपको मालूम होगा डायमंड मर्चेंट्स एसोसिएशन जो कलकत्ते का था उसका ब्रह्मा बाबा प्रेसिडेंट भी थे, तो इसलिए वो डायमंड बाबा के पास आ गए। तो बाबा आस्ते आस्ते डायमंड बेचते गए और दाम इन्फ्लेशन के कारण डायमंड्स के दाम बढ़ते गए, और उनके पास जो पैसे थे तो पैसा पैसा के रूप में ही रहा, तो वो के प्रॉफिट में नहीं रहा, परंतु ब्रह्मा बाबा के पास जो डायमंड था बाबा उसको बेचते थे, और बाबा को मालूम था कि कहाँ पर डायमंड की कीमत ज्यादा मिलेंगी, और बाबा तो कलकत्ते में थे तो इसके कारण बाबा की प्रेस्टीज थी। दादा विश्व किशोर का भी कलकत्ते में धंधा था, वो भी उनकी भी राम लक्ष्मण कंपनी जो थी उस प्रकार से, तो वहां जाते थे कराची से, बाबा उनको भेजते थे वहां जाकर के डायमंड बेच के आते थे, पैसा आता था। तो इस प्रकार से दाम जो बढ़ते गए उसके कारण संचालन और यज्ञ का फाइनेंस का कारोबार जो है सहज रूप से हो गया। इतने तक सहज रूप से हो गया, बाबा इतना सुंदर कारोबार उन्होंने किया, हम लोग जो है यादगार के रूप में चीजें रख लेते हैं, यादगार के रूप में रख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा ने जसोदा भवन लिया, जिस जसोदा भवन, जसोदा आपको मालूम होंगे बाबा की लौकिक युगल थी जसोदा, उसके नाम पर जसोदा भवन लिया, और वहां ही ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर तीन कमरे थे, और एक कमरे में 10x10 के कमरे में बाबा ने क्लासेस शुरू किया, फिर संख्या बढ़ी तो एक कमरा बाजू की दीवार जो है वो तोड़ दिया, तो दो कमरा मिक्स हो गया, तो 20x10 का कमरा बना, और भी ज्यादा संख्या बढ़ गई तो तीसरा कमरे की भी दीवार तोड़ दिया, तो 30x10 का बाबा का ऊपर का फ्लोर बन गया। फिर ज्यादा संख्या बनी तो उसके बाद जो है बाबा ने कंपाउंड के अंदर बैठना शुरू किया और कंपाउंड के अंदर मुरली सुनाना शुरू किया, और जिसके कारण क्योंकि लोग आने जाने वाले देखते थे, इसके कारण देखा कि ओम मंडली के अंदर साक्षात्कार जो हो रहा है, पहले ऊपर था इसलिए किसी को मालूम नहीं पड़ता था, नीचे में हुआ तो साक्षात्कार भी होता रहा। आपको दादी प्रकाशमणि का अनुभव मालूम होगा कि दादी पहली बार आई, प्रकाशमणि दादी, तो उन्होंने उस दिन सुबह अनुभव किया था, श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया था, तो दादी प्रकाशमणि भी नीचे आई और अपने कंपाउंड में आए तो उन्होंने देखा ब्रह्मा बाबा को, तो वही श्री कृष्ण जो गेंद खेलता था वो खेलता खेलता बाबा की तरफ गया और बाबा के अंदर मर्ज हो गया, और दादी प्रकाशमणि जो है एकदम ध्यान में मस्त हो गई, एक डेढ़ घंटा ऐसे ही बैठी रही। लोगों ने उसको उठाने का प्रयत्न किया, बाबा ने कहा नहीं बच्चे को उठने नहीं दो, बाबा बच्चे इस ध्यान में है, साक्षात्कार कर रही है। तो इस प्रकार से बाबा का कारोबार जो है वो जसोदा भवन में इतना अच्छा हुआ, उसके बाद आप जानते हैं कि जसोदा भवन अर्थात हैदराबाद से यज्ञ की शिफ्टिंग हुई कराची, मालूम है ना सबको, इतिहास तो सुना हुआ होगा, कराची शिफ्टिंग हुई। कराची में बाबा ने क्या किया, कोई भी मकान खरीद नहीं किया, कारोबार में बाबा कितना सुंदर अर्थशास्त्री था, कोई भी मकान खरीद नहीं किया। और हमारे जैसा कोई होगा ना तो कहेंगे जसोदा भवन तो जहां तो यज्ञ की स्थापना हुई, वो जसोदा भवन हम कैसे बेच सकते हैं? आप बेचेंगे? समझे, आपके हाथ में इंचार्ज में आप जसोदा भवन होगा तो आप कैसे बेचेंगे? कहेंगे नहीं, ये तो यादगार है, हमारे यहाँ स्थापना हुई है, हमारे यहाँ हुआ है, ऐसा हुआ ऐसा हुआ है। बाबा ने कहा भावना भावना की बात छोड़ दो, वास्तविकता के आधार पर चलो। और वास्तविकता के आधार पर चलने से क्या हो गया, बाबा ने वो बेच दिया। और उसके बाद क्या हुआ, हिन्दुस्तान पाकिस्तान हुआ। तो पाकिस्तान से सभी को यहाँ आना पड़ा। जिन्होंने मकान मकान के रूप में रखा हुआ था, बाबा ने तो क्या किया, उसको बेच करके पैसा इकट्ठा किया था। और तो इसके कारण बाबा का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। जो कराची से यहाँ आए, ये मकान सभी जो क्लिफ्टन का मकान जो है आदि जो भी है वो सब किराए पर थे। बाबा ने कोई भी मकान खरीद नहीं किया। और जसोदा भवन आदि जो भी था उधर का, कराची का और सबको, अरे हैदराबाद का, वो बिकवा दिया। जो इसलिए क्या हुआ, कराची से यहाँ आए तो बाबा को कोई भी बात का नुकसान नहीं हुआ। तो इस प्रकार से बाबा कितना सुंदर दीर्घ दृष्टि के हिसाब से काम करने वाले थे। कारोबार करने का ये भी होता है, दीर्घ दृष्टि करनी चाहिए, इन डिवाइन इनसाइट भी होनी चाहिए। इस प्रकार का कारोबार करने से क्या हो गया, बाबा ने कुछ भी एक भी पैसे का भी नुकसान नहीं किया। जो भी सामान जो था वो आ गया, फिर भी थोड़ा सामान रह गया था तो बाबा को संतरी दादी के द्वारा बाबा ने संदेश भेजा कि बच्चे आप लोग उधर उसने में इतना सामान भूल गए हो। फिर इन्होंने पुतली दादी जो थी, दादी ब्रिजेंद्रा की बहन जो थी, उसका पति जो था गोविंद राम, उसको लिखा। पर वो गए कराची के अंदर, वहां जाकर के जो सामान जो रह गया था वो निकाला और यहां पर भेजा। इस प्रकार से ब्रह्मा बाबा बहुत अर्थशास्त्री थे। कारोबार के अंदर बाबा ने उसको पहले से ही निमित्त बनाया और हर बात में आगे रख करके कारोबार किया। तो आप बच्चों, हम सब बच्चे जो है, बाबा हम बच्चों को भी कह रहे हैं आपको भी कारोबार सीखना ही पड़ेगा। इसलिए हमने ये सीरीज लिखना शुरू किया है, मास्टर ऑफ डिवाइन एडमिनिस्ट्रेशन। ये दैवी परिवार का है, दैवी परिवार का कारोबार कैसे किया जाए, कैसे यहाँ हर चीज की कीमत है, हर चीज की जरूरत है, और कैसे कारोबार के अंदर बाबा की मदद मिल सकती है। यहाँ भी तो बाबा की मदद मिल सकती है, परंतु बाबा अनुभव करा देता है, उसके बाद हम अपने पांव पर हमको खड़ा रहना पड़ेगा। मैं अपने अनुभव से बताऊं, बाबा अव्यक्त तो हो गए, उसके बाद बहुत हम संदेश बाबा को भेजते थे, बाबा इसका क्या किया जाए, इसका क्या किया जाए। हर दो तीन दिन के बाद गुलजार दादी को बाबा के पास जाना पड़ता था और बाबा से संदेश लेकर के आते थे। और फिर अभी क्या हो गया, हम बाबा ने ट्रेनिंग दिया, इसके परिणाम रूप क्या हो गया, पिछले 6-8 मास में तो गुलजार दादी को हमने एक भी संदेश नहीं दिया बाबा के पास ले जाने का। और स्टेज पर आते हैं तो बाबा बता देते हैं, बोलते हैं, हम इसको पूछ लेते हैं। बाकी जितना भी कारोबार जो है बाबा ने ट्रेन किया हुआ है, इसके परिणाम क्या होता है, मकान खरीदना है, सेंटर खोलना है, इधर जाना, वो सब प्रकार का कारोबार बाबा ने सिखा दिया। इसके कारण क्या होता है कि अभी हम अपने पांव पर खड़े रह सकते हैं। और यही बात होती है कि सतयुग त्रेता के अंदर भी हमको अपने पांव पर खड़ा रहना पड़ेगा। और इसके लिए आज का ये टॉपिक हमने रखा है, क्योंकि 8 बज रहा है इसलिए रखा हुआ है कि आप अपने आप से आप पूछो कि हम इस प्रकार के सतयुगी और संगम युगी, सतयुगी और त्रेता युगी कारोबार के लिए अनुभवी है। अगर हमारे हाथ में विश्व का कारोबार आ जावे तो विश्व का कारोबार करने के लिए हम लायक हैं, हमारे पास वो एबिलिटी है, हमारे पास उसका परफेक्शन है, हमारे पास इस प्रकार का कारोबार करने के लिए जो बुद्धि चाहिए, वो बुद्धि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट चाहिए, वो हमारे पास है नहीं है तो अभी भी समय है। अभी भी समय के आधार पर कारोबार करो। आज की भी मुरली में आपने सुना होगा, बाबा ने कहा है कि ट्रस्टी रूप में काम करेंगे तो मेहनत कम और फल ज्यादा, और गृहस्थी रूप में काम करेंगे तो मेहनत ज्यादा और फल रिटर्न कम होगा। आज के भी मुरली में सुना होगा, पिछले रविवार की मुरली में भी बाबा ने कहा था कि जो मर्यादा की लकीर के अंदर रह करके ईश्वरीय सेवा करेंगे तो बाबा की मदद मिलेंगी, पर मर्यादा की लकीर को क्रॉस करके आगे जाएंगे तो आपको बाबा की मदद नहीं मिलेंगी। इस प्रकार से बाबा हम बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, परंतु ये गृहस्थ जीवन में, व्यवहार के जीवन में कारोबार कैसे करने का वो सिखाते हैं, परंतु प्रैक्टिकल लाइफ में जो जैसे दादी प्रकाशमणि ने काम किया, हमारी दीदी मनमोहिनी ने किया, दादी जानकी संभाल रही है, दादी जानकी ने भी कितना सुंदर जंप लगाया, पुणे से सीधी लंदन गए और काम वहां काम जा करके बाबा ने उनको कहा कि वहां दूसरा मधुबन का मॉडल बनाना, वो काम किया। इस प्रकार से कारोबार आगे बढ़ाते बढ़ाते चलते रहे, उसके कारण क्या हो गया। तो इसलिए हम आपको कहते हैं कि इस प्रकार से आप सीखो, और इस प्रकार से ये ट्रेनिंग का कारोबार रखा हुआ है कि मन में ट्रेनिंग का कारोबार करिए और उसके कारण क्या हो जाएगा। कि हमारे पास कानून की दुनिया की भी बातें कितनी आती हैं, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं। हमारे ये जो है वेबसाइट जो है उसके अंदर किसी ने जो वेबसाइट में लिखा हुआ है, यहां पर मैनेजमेंट अपने मेडिकल सर्विसेज होती है, एजुकेशनल सर्विस होती है, इस प्रकार से अनेक अनेक बातें लिखी हुई है, सर्विसेज की बातें लिखी हुई है, ज्यूरियस सर्विसेज होती है। तो सरकार ने अभी आप जानते होंगे सर्विस टैक्स लगाया हुआ है, सर्विस टैक्स लगाया हुआ है। पहले तो अपन 10-15 सर्विसेज के ऊपर टैक्स था, अब तो लास्ट में चिदम्बरम ने क्या किया, हाँ कि सभी सेवाओं पर सर्विस टैक्स लगा दिया, 18-19 जो जैसे पर्सनल लाइफ की जो सर्विसेज थी उसके ऊपर टैक्स नहीं। तो इसके कारण क्या हो गया, राजस्थान का जो सर्विस टैक्स कमिश्नर जो है वो उनके डिपार्टमेंट ने पढ़ा कि यहाँ पर मैनेजमेंट ये अपने मेडिकल सर्विसेज दी जाती है, एजुकेशनल सर्विसेज दी है, सब में सर्विस शब्द लिखा था। तो इन्होंने सर्विस टैक्स कमिश्नर और उनके साथी यहाँ आए, इन्होंने सारा ही पांडव ज्ञान सरोवर और शांतिवन चेक किया और इन्होंने रिपोर्ट दिया सर्विस कमिश्नर को कि यहाँ तो कोई ऐसी टैक्सेबल सर्विस नहीं है। तो फिर हम लोगों को बुलाया सर्विस टैक्स कमिश्नर ने और उनको कहा कि आप ये सर्विस शब्द क्यों लिखते हो। हमने कहा क्यों, कहा कि अभी तो सभी टैक्स सर्विसेज के ऊपर टैक्स हो गया है, अच्छा है आप पैसा नहीं लेते हो, अगर आप पैसा लेंगे तो उसके ऊपर सर्विस टैक्स लग सकेगा। तो इसलिए आप एक काम करो, अभी आपकी डिवाइन डिक्शनरी जो है, हमने उनको कहा हमारी डिवाइन डिक्शनरी में तो क्या होता है, ईश्वरीय सेवा का अंग्रेजी क्या होगा, विद्या क्या होगा, गॉडली सर्विसेज होगा। तो हमने कहा कि हम तो गॉडली सर्विसेज उसका हिंदी का इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं, कहा वो भूल जाओ, हिंदी में भले सेवाएं रखो पर अंग्रेजी में सर्विसेज मत रखो। तो हमने उनसे पूछा कि हम क्या करें, ये प्रैक्टिकल सीखने की बात है। नहीं तो उसने कमिश्नर ने कहा मैं तो नॉन करप्ट हूं, आपके पास 2 बार आपके शिविर में भी आ चुका हूं, कॉन्फ्रेंस में भी आ चुका हूं, इसलिए मैं करप्ट नहीं हूं, नहीं तो और कोई करप्ट ऑफिसर आता, कमिश्नर आता तो आपके 15-20-25 करोड़ लाख के या करोड़ के डिमांड रेज करता और 2-5 लाख रुपया करप्शन में पैसा लेकर के जाता। इसलिए उन्होंने कहा कि आप अभी सर्विस शब्द नहीं यूज करो, अभी आप, हमने कहा क्या शब्द यूज करें, तो कहा आपका कहना बराबर है कि सेवा का इंग्लिश ट्रांसलेशन सर्विस होता है, परंतु सर्विस आर टैक्सेबल, इसलिए कहा कि आपकी डिक्शनरी से सर्विस शब्द निकाल दो और अंग्रेजी में लिखना हो तो उसने सजेशन दिया गॉडली एक्टिविटीज करिए, लिखिए तो क्या हो जाएगा, आप सर्विस टैक्स के उसमें से दायरे से बाहर निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से सर्विस टैक्स आई, आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ, इसे कौन सी कितनी बातें आ गई यहाँ पर सीखने को मिलती है, रोज रोज होता ही है कारोबार, मकानों का कारोबार, आपस में जो भी प्रोग्राम का कारोबार। अभी हम लोगों ने नक्की किया कि यहाँ पर एक तपोवन की भूमि में दर्शनीय स्थल बनना चाहिए, टूरिस्ट अट्रैक्शन का बनना चाहिए, क्योंकि जैसे और भी संस्था वालों ने बनाया हुआ है यहाँ, तो जैसे शाहजहां ने ताजमहल जैसा दर्शनीय स्थल बनाया टूरिस्ट अट्रैक्शन, तो इस प्रकार से हम लोग भी कोई ऐसा टूरिस्ट अट्रैक्शन बनावे तो हमारे पास भी लोग इस प्रकार से आ जावे। क्योंकि मकान के द्वारा जो सेवा होती है वो व्यक्ति नहीं कर सकता है, आज का भी आपने सुना होगा, अपने सोमनाथ की सेवा है जो इसका रिजल्ट सुना होगा, 4-4.5 लाख या 4.25 लाख पिछले महीने में जनवरी महीने में आए। तो इतना व्यक्ति के द्वारा कारोबार नहीं हो सकता है, व्यक्ति के बदले में मकान काम कारोबार कर सकता है, टीवी आदि के द्वारा व्यापक रूप में कारोबार हो सकता है। तो उस प्रकार से वो कारोबार सीखना पड़ेगा कि कैसे मकानों के द्वारा आदि के द्वारा कारोबार सेवा के अंदर व्यंग मार्ग की सेवा कैसे करे, उसके लिए सोचना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा। और इसके लिए बेस्ट ट्रेनिंग जो है हमारे पास क्या है आपको मालूम होगा, हमारे पास पहले हम कहाँ भी जाते हैं तो खोलते हैं तो क्लासेस खोलते हैं, क्लासेस में से गीता पाठशाला होती है, गीता पाठशाला से उप सेवा केंद्र होता है, और उप सेवा केंद्र से सेवा केंद्र, सेवा केंद्र से भी जोन, सब जोन, सब जोन से सब जोन, इस प्रकार से हमारी भी पिरामिड बना हुआ है, इस प्रकार से कारोबार चलता है। तो ये बेसिक जो है क्लास चलाना, क्लास में जाकर के मुरली सुनाना, मुरली आप सुनाते हैं और आप पढ़ते हैं उसमें कितना फर्क पड़ जाता है, वो आप मुरली सुनाएंगे तब मालूम पड़ेगा कि सुनना और समझाना उसके बीच में कितना फर्क है। तो इस प्रकार से वो सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे तो कारोबार में भी सीखने का मिलेगा। एक बार मैं आपको एक अनुभव बताऊं, दादी जी और हम सब ऊपर यीशु दादी के ऑफिस में बैठे हुए थे, इतने में एक भाई का फोन आया कि दादी मेरी इच्छा है कि इस टाइम पर गुरुवार के दिन भोग लगे, मैं 1000 रुपया भेजता हूँ भोग के लिए। और मधुबन के जितने भी बहन भाई है उसके मुख में, सबके मुख में ये भोग जो है मेरे बच्चे के या किसी के यादगार में बनाया है, उसके लिए सबके मुख में वो जाना चाहिए, तो मैं 1000 रुपया भेजता हूँ। तो दादी ने मुझे पूछा कि 1000 रुपये में क्या बनेगा जो सबके मुख में जाए। मैंने कहा मुझे क्या मालूम 1000 रुपये में क्या बन सकता है। दादी ने फट से कह दिया कि ये बन सकता है, ये इतना बने, अभी मधुबन में 300 लोग है, 300 लोगों की 300 चक्कियां चाहिए, और इसलिए ये बनेगा 1000 रुपये में हो जाएगा। तो ये भी एक छोटी सी बात है, 1000 रुपया आपको कोई देता है और सबका मुख मीठा करने का है तो कैसे कारोबार हो जाएगा, ये सारी बातें सीखने की होती है। तो ये बात सीखने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है, और इसलिए अनुभव जो है ना वही बेस्ट गाइड है हम सबको सिखाने के लिए। तो इसलिए हमने आपका आज का ये टॉपिक यहाँ रखा हुआ, हमारे पास ये सब आए थे, बहन जी और श्रीकांत भी आया था, कहाँ गया श्रीकांत, नहीं है, ये सब आए थे, इन्होंने टॉपिक रखा था, हमारा कोई दूसरा कोई टॉपिक सोचा था, मैंने कहा इसके बदले में मास्टर ऑफ डिवाइन एडमिनिस्ट्रेशन का कारोबार रखो तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए ये टॉपिक खास हमने अपनी इच्छा से रखवाया है। आप सब इस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन के कारोबार में, जो संगम युग का कारोबार है, कारण संगम युग में जो सीखेंगे वही, जैसे संगम युग में पुण्य का खाता जो जमा करेंगे उसके आधार पर हमारा भविष्य बनेगा, इस प्रकार से संगम युग में जितना मैनेजमेंट का कारोबार सीखेंगे इतना ही उसके आधार पर आपको और बातों में करना पड़ेगा, साथ साथ राज्य कारोबार करना होगा तो आपको मैनेजमेंट का कारोबार सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप साहूकार बनेंगे, साहूकार कैसे हो गए, वो भी अच्छी बात है। आपको मालूम होगा राणा प्रताप जो था राजस्थान का, उसका एक जब उसके राज्य में एक साहूकार था भामा शाह करके था, मालूम होगा, मालूम है आपको डॉक्टर साहब भामा शाह, उसने ही 28,000 श्रफी या जो भी उस टाइम पर वो दे दिया, और उसके कारण उसने फिर से अपनी सेना को तैयार किया, और हल्दीघाट का युद्ध जो हुआ वो भामा शाह के द्वारा ही मिला हुआ था। ऐसे धन का सहकार सहयोग मिल सकता है, वो साहूकार के रूप में, साहूकार का जीवन आप सोचना, प्रजा का जीवन अच्छा या साहूकार का जीवन अच्छा, या राजा का जीवन अच्छा, या महाराजा का जीवन अच्छा, या विश्व महाराजा का जीवन अच्छा। इस प्रकार से जितना जितना आगे बढ़ते जाएंगे, आज भी बाबा ने कहा ना, हाँ क्या कहा, एक तो साक्षी दृष्टा और दृष्टांत के रूप में, और त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी बनकर के, खाली त्रिकालदर्शी का ज्ञान नहीं होना चाहिए, साक्षी दृष्टा का ज्ञान नहीं होना चाहिए, दृष्टांत रूप नहीं, परंतु उन सबका प्रैक्टिकल स्वरूप बनना पड़ेगा कि हम दुनिया के लिए त्रिकालदर्शी बनकर के सेवा करते हैं, हम साक्षी दृष्टा बनकर के कारोबार करते हैं, हम दृष्टांत रूप में कारोबार करते हैं, इस प्रकार का कारोबार करना ही पड़ेगा। तो एक तो खाली अभी तो समय नहीं है खाली, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, और इसके कारण हम आपको क्या बताएं, हमने लिखे हुए मैं लेके आया हूं, हमने क्या कौन से टॉपिक पर पहले टॉपिक लिखा हुआ है, मैनेजमेंट के लिए डिजायरेबल होना चाहिए, डिपेंडेबल होना चाहिए, डिवोशन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, फिर क्लीन, क्लियर एंड क्रिएटिव, ये सारी बातें मैनेजमेंट के लिए कैसे हो। मैनेजमेंट गुरु जो होते हैं लौकिक दुनिया के, इन्होंने ये बातें सिद्धांत के रूप में सिखाई है, परंतु बाबा अभी सिखा रहा है और बाबा के दृष्टिकोण से, क्योंकि मैनेजमेंट गुरु जो सिखाते हैं आजकल के, वो सत्युग देवता में आएंगे या नहीं मुझे मालूम नहीं है, शायद ना भी आवे, पर और आवे भी ज्ञान ले लेंगे तो आ सकते हैं, परंतु अभी तक तो ऐसा लग रहा है। तो इसके कारण बाबा जो सिखाता है उसकी ट्रेनिंग जो ऐसी सुंदर ट्रेनिंग है, इसके कारण मैं अभी लिखता रहूंगा, 5-7 आर्टिकल उसके ऊपर लिखूंगा, आप हो सके तो पढ़ना, और उसके आधार पर आपको इंटरेस्ट हो तो आप इस प्रकार से मैनेजमेंट के कारोबार में आगे बढ़िए। देखो हर बात में बाबा सिखाता है, रेडियो मधुबन बना हुआ है, कहाँ हमने सोचा था कि ये हम रेडियो के ऊपर कारोबार करेंगे, सिखा के जॉके बनेंगे, क्या करेंगे, स्टूडियो के बन गया, स्टूडियो बनाने के पहले कहाँ सोचा था, हमने तो कभी नहीं सोचा था हम स्टूडियो बनाएंगे और स्टूडियो का कारोबार करेंगे, परंतु बाबा ने वो भी सिखाया, इसलिए हर बात बाबा सिखाता रहता है। परंतु सीखने के लिए बाबा का फंडामेंटल नियम है, हिम्मत है बच्चे तो मदद है बाप, वो फंडामेंटल नियम है, आप एक कदम आगे बढ़ेंगे तो ही बाबा आपको मदद के लिए आगे आएगा, नहीं तो आप ऐसे बैठे रहेंगे कि तो बाबा मदद नहीं कर सकता, इसलिए आपको भी एक्टिव पार्टिसिपेशन करना ही होगा, विश्व कारोबार के अंदर, यज्ञ कारोबार के अंदर, जो भी कहो इसके लिए वो कारोबार में आपको कारोबार में मददगार बनना पड़ेगा, ना सिर्फ मददगार परंतु डिसीजन मेकिंग पावर भी होना चाहिए। जो आप योग की 8 शक्तियां हैं ना, उसके अंदर एक शक्ति है मालूम है, कौन सी शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति है, वो भी आपके पास होनी चाहिए, जजमेंट करे या ना करे, रॉन्ग जजमेंट होगा तो क्या होगा आपको मालूम होगा, सेकंड आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नेपोलियन ने गलती किया, उसको मालूम नहीं था कि ऑस्ट्रिया की सेना जो है लॉर्ड वेलिंगटन के पास आ गई है, उसने समझा था वो दूर है, इसलिए उसने 1/3 अपनी सेना जो है इसके साइड में भेज दिया, और बाद में लॉर्ड वेलिंगटन के साथ में वाटरलो युद्ध हुआ, और नेपोलियन ने जो रॉन्ग जजमेंट ले लिया उसके कारण क्या हो गया, हाँ कि वो हार गया और सेंट हेलिना में उसको जाकर के अंग्रेज लोगों ने रख दिया। ऐसे ही हिटलर ने भी क्या हुआ, चैम्बरलिन ने जो है ऐसा वायुमंडल बना दिया, अपने चर्चिल को रशिया में 2-4 बार भेजा, और उसके कारण हिटलर को ऐसा ख्याल में आया कि मैं इंग्लैंड के ऊपर अटैक करूंगा तो रशिया मेरे पास पीछे से आ जाएगा, तो इसलिए उसने क्या किया, रशिया के ऊपर अटैक किया, और ये ग्रेटेस्ट ब्लंडर उनकी है, और उसके कारण क्या हो गया, रशिया की ठंडी के अंदर वो उसके सेना जो जर्मन सेना जो नहीं टिक सकी, और सेंट पीटर्सबर्ग तब गई और उसके बाद हारता गया, मतलब नुकसान में वो रहता गया, और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का क्या रिजल्ट हुआ वो तो आप सब जानते हैं। तो इस प्रकार से राइट डिसीजन फॉर द राइट टाइम, इस प्रकार का करने के लिए आपको अभ्यास की जरूरत है, और इसके लिए अभ्यास के लिए अनुभव के सिवाय और कोई ट्रेनिंग नहीं है। आप कितनी भी किताब पढ़ते रहेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। रोटी बेलने का है, आप कितना भी आपको, हमारी माता है जो रोटी बेलती है, किताब पढ़ने से क्या रोटी बेलना आ जाएगा क्या, आ जाएगा, हाँ अंबिकाबेन सीखना ही पड़ेगा, रोटी ऐसा बेलना पड़ेगा ना, तो ही आ जाएगा, अनुभव की बात है, अनुभव अच्छा नहीं से नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। जीवन के अंदर परिवर्तन होता है, कन्या से पत्नी बनती है, पत्नी से माता बनती है, माता से सास बनती है, ये सारी जो स्टेजेस जो है उसके लिए पहले से ही ट्रेनिंग होता है तो अच्छा रहता है, नहीं तो क्या होता है, बहुत कुछ तकलीफ हो सकती है। तो इस प्रकार से हम लोगों को भी, हमारा भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है संगम युग से सत्ययुग त्रेता के लिए, तो इसलिए वहां पर जो हमारा कारोबार होगा उसकी ट्रेनिंग अभी से ही लेनी पड़ेगी। इसके लिए हमने सब्जेक्ट रखा है मास्टर ऑफ डिवाइन एडमिनिस्ट्रेशन, सोचना है इसके ऊपर, मेरा कोई फोर्स नहीं है, ऐसे ही बैठे रहेंगे, ऐसा ही कारोबार करेंगे, घर में जाकर के सेंटर में आकर के, सेंटर से जाकर घर में जाएंगे, उस प्रकार के कारोबार किया, उस प्रकार का जीवन व्यवहार करना, वो भी अच्छा है, मैं ना नहीं कहता हूं, परंतु एक कदम आगे बढ़ो और आगे बढ़ करके भविष्य का कारोबार के लिए, भविष्य का राज्य भाग्य कहो, भविष्य का जो भी प्रकार का भाग्य है उसको बनाने के लिए प्रयत्न करो तो अच्छा है। सब बात तो बहुत ही कर सकते हैं, परंतु क्या है, घड़ी जो है देखो 8:15 बज गया, हमने ज्यादा टाइम ले लिया, सॉरी। ओम शांति।
रमेश भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद।